नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। आज एक शुभ समाचार से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। चेन्नई से हमारे पास फोन कॉल आया माधवी मंडल जी का है, वो वेस्ट बंगाल के। उन्होंने बताया कि उनका छोटा बच्चा, उसने एक सिक्का निगल लिया था। दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, माँ सोच रही थी कि चलो मल के साथ बाहर आ जाएगा, लेकिन जब बाहर नहीं आया तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि सिक्के का अंदर रहना ठीक नहीं है, आप फिर भी एक दिन इंतजार कर लें, और यदि नहीं होता है तो कल बच्चे को ले आएं, और फिर यदि होता है तो हम इसका ऑपरेशन करेंगे। अब एक दिन था माँ के पास। अब वो सारे दिन वैसे पीस ऑफ माइंड चैनल देखती हैं, समाधान कार्यक्रम भी रेगुलर देखती हैं। उन्होंने राजयोग का सुंदर अभ्यास किया और एक शुभ समाचार कि शाम को वो सिक्का मल के साथ बाहर आ गया। माँ ने बहुत चैन की सांस ली और बहुत खुशी के साथ उन्होंने ये फोन करके हमें बताया कि ये बात जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो माधवी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ ही ऐसे सुंदर अनुभव जब हम तक आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। समाधान का लक्ष्य यही है कि हम शुभ शुभ समाचार सुनते रहें आप सभी से, और जो भी सुंदर अभ्यास आपको दिए जाते हैं पूरे विश्वास के साथ यदि आप करते हैं तो सचमुच ऐसे सुंदर अनुभव प्राप्त होते हैं। तो आइए इसी सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत अच्छे अच्छे शुभ समाचार हमें प्राप्त होते रहते हैं, उनमें से एक शुभ समाचार मैंने सोचा शुरुआत इसी से की जाए।
थैंक्स। सच तो यही है कि योग बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोग इसे कोइंसिडेंट भी मान सकते हैं कि वो तो अचानक आप ही आ गया, आप लोग अपने योग की तारीफ कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन सचमुच योग एक बहुत बड़ी शक्ति है। इससे मनुष्य का चित्त शांत होता है, प्रकृति बहुत कुछ सहयोग करने लगती है, ये जो देह है इसमें कई चेंजेज आने लगते हैं, हमारे शरीर की सभी चीजें चार्ज होने लगती हैं, लंबी आयु हो जाती है। तत्कालीन लाभ में चित्त शांत होने के साथ सफलता बहुत मिलती है। जहां तक ये समाचार सुनने को मिलते रहते हैं विद्यार्थियों के, कि उन्हें बहुत सफलता मिलती है, जो बहुत भयभीत थे, घबराहट अंदर होती थी, एग्जाम फियर बहुत था, तो काफी लोगों को इसकी मदद मिल रही है। तो यदि वास्तव में राजयोग के फायदों का मनुष्य को अच्छी तरह ज्ञान हो तो इसको करने में बहुत रुचि हो जाएगी। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सरल भी है और बहुत गुह्य भी है। गुह्य इसलिए है क्योंकि ये परमात्म मिलन का अनुभव कराने वाला है। भगवान से मिलने का ये मार्ग नहीं है, लेकिन भगवान से मिलन का अनुभव इससे होता है। परमानंद की फीलिंग होती है, उसमें आत्मा पूरी तरह तृप्त हो जाती है, मन हमारा डीप साइलेंस में चला जाता है, एक अलौकिक खुशी उससे प्राप्त होती है। इसलिए बार बार बहुत अभ्यास की जरूरत है। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत समय से अभ्यास भी कर रहे हैं लेकिन खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मोह माया में लगे हुए हैं, काम धंधों में लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं चैनल पे, लेकिन केवल इससे नहीं, हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए।
और वैसे भाई साहब, जैसे आपने कहा कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, माधवी जी भी यही कह रही थी कि लोग तो यही समझेंगे, लेकिन एक दिन था मेरे पास और मैं समाधान देखती हूँ तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अच्छा योगाभ्यास करूंगी तो ये हो जाएगा, और योग करने के साथ वो संकल्प यही कर रही थी भ्राता जी कि सहज रूप से बाहर आ जाए। तो ये वास्तव में योग का ही एक चमत्कार कह लें या शक्ति कह लें, जिसके माध्यम से बिना ऑपरेशन के ये बात सफल हो।
संकल्प शक्ति का प्रभाव तो है, जैसा मैंने कहा, हमारा एक एक संकल्प हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। इस बात को जो बहुत अच्छे डॉक्टर
साइंस भी स्वीकार कर
वो इसको जानते हैं, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिनका रिसर्च माइंड है, जिन्होंने गहरी स्टडी की है। बहुत लोग तो अपने प्रोफेशन में लग गए, भाई दवाई दे रहे, लोगों को ठीक कर रहे, तो वो इन बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोच विचार करते होंगे, परंतु हमारे यहाँ भी कई डॉक्टर्स हैं जो इस पर लेक्चर ही लेते हैं कि शरीर में कैसे सेल्स में, जीन्स में, उसके भी अंदर कुछ सूक्ष्म चीजें होती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो हम अपने संकल्पों को बहुत पॉजिटिव रखें और योग अभ्यास करें तो हमारी इनर पावर बहुत बढ़ेगी, और जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं घटने वाली हैं, उनको हम प्रभावित कर सकते हैं।
बिल्कुल प्रताप जी, कुछ फोन कॉल्स हमारे पास आए थे और आज चर्चा ऐसी चल पड़ी है जो योग से संबंधित है, तो प्रश्न भी लगभग योग से जुड़े हुए ही आए हैं। पहला प्रश्न प्रताप जी, कौशल्या साहू जी का है दुर्ग से। ये कहती हैं कि मैं अभी अभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ, सेवन डेज का बेसिक कोर्स मैंने किया है लेकिन योग नहीं लगता, मन बहुत भटकता है। योग की बात हम लोग लगातार करते हैं लेकिन ज्यादातर ये समस्या आती है, मन भटक रहा है, योग नहीं लग रहा है।
पहले तो योग की एक प्रॉपर विधि इन सबको जाननी चाहिए।
रता जी, ये सेवन डेज ही पर्याप्त है या आगे भी कुछ करना पड़ेगा?
सेवन डेज में तो एक प्राइमरी नॉलेज मिलती है, समझो टच होता है केवल
जी,
लेकिन राजयोग की जो एजुकेशन है वो बहुत घुह्य है, उसको देने वाले बहुत कम हैं सब जगह। जो ऐसे जिज्ञासु हैं उन्हें ऐसे योग टीचर भी नहीं मिल पाते, बस शिव बाबा से योग लगाओ, शांत में बैठो, उसके गुणों का चिंतन करो, इतने तक ही लोग बता पाते हैं। लेकिन सचमुच ये बहुत ही घुह्य विद्या है और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ धारणाओं को अपनाकर यदि मनुष्य इसका निरंतर अभ्यास करे तो उसको योग की गहराई समझ में आएगी। कुछ टाइमिंग फिक्स कर लेनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, जैसे इनका केस है तो ये ऐसा फिक्स कर लें कि इन्हें दिन में 5 बार 10-10 मिनट बैठ के योग अभ्यास करना है। कुछ दिन 3 मास ही ये ऐसी धुन लगा दें और देखिए 10-10 मिनट निकालना किसी के लिए कठिन काम नहीं होता है। और प्योरिटी अपनाएं, साथ में अपने अन्न को शुद्ध करें, अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। हमारे सेंटर्स में जो क्लासेज होती हैं उसको अटेंड करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखता है। नॉर्मल रूप से मनुष्य कहता रहता है कि उसका मन बहुत भटकता है, उसका मन बहुत भटकता है, पर जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो ये देखता है उसका मन कहाँ भटक रहा है, क्यों भटक रहा है। किसी ने अपमान किया उसमें भटक रहा है, किसी ने बहुत कष्ट दिया उसमें भटक रहा है, कोई मनोविकार ज्यादा काम कर रहे हैं, गुस्सा बहुत आता है इसलिए इरिटेट रहते हैं, मन उसमें भटक रहा है। तो जो ज्ञानी आत्मा है वो अपने मन की जो दिशा है उसको जांच करता है, नोट करता है कि क्या कारण है इस मन के भटकने के। कुछ काम धंधों में ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी बहुत अच्छे केसेज हमारे पास आते हैं। अभी अभी इंग्लैंड लेस्टर एक जगह है, वहां के कपिल मुझसे मिलने आए और जो बहन थी उसने बताया कि मेरे एक भाई को ब्रेन की ऐसी बीमारी हुई है जो सारे संसार में केवल 200 लोगों को ही है और डॉक्टर्स ने हाथ खड़े किए, इसका कोई इलाज नहीं, उसका हाल दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, स्थिति गिरती जा रही है, बोलना बंद हो गया, केवल सुनना बाकी है, बॉडी भी डेड होता जा रहा है। फिर दूसरा कहा कि और जो दूसरा भाई है उससे छोटा, उस पर भी इस बीमारी का इफेक्ट आता जा रहा है। तो डॉक्टरों ने तो कह दिया जेनेटिक है, अभी इनके माँ बाप को और संबंधियों को तो था नहीं, लेकिन जब डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता तो जेनेटिक है, ये हेरिडिटरी है, ये सब कह के वो छूट जाते हैं। तो लेकिन मैं जो बात सुना रहा था वो ये कि इस बहन की मनोस्थिति बहुत अच्छी थी, ये व्यर्थ संकल्पों के तूफान में, उदासी में, ये बहुत परेशानी में नहीं थी। हालांकि घर में और कोई नहीं है, पति पत्नी भी बुजुर्ग हो चुके हैं काफी, 60-65 साल के। कहा मेरी माँ मेरे साथ है, वो 88 ईयर्स की है, ये दोनों भाई मेरे साथ हैं। देखिए ये 5-6 का परिवार, इनके अपने बच्चे होंगे वो तो अलग है, ये 5-6 का परिवार इकट्ठा रहता है, माँ बहुत बुजुर्ग, 2 भाइयों की ऐसी स्थिति, ये भी बुजुर्ग, लेकिन ये बहुत खुश कि बाबा करेगा, ये हमारा हिसाब किताब है कर्मों का, हमें तो अपने भाइयों की संभाल करनी है, आखिर वो हमारे पास
रहते हैं। बहुत डाउन हो
हाँ देखिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है, लोग खुद भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और भगवान को भी कोसने लगते हैं कि ये सारे दुख तुमने हमारे ऊपर ही क्यों उड़ेल दिए हैं, क्या हमने ही ज्यादा पाप किए, और भी तो बहुत हैं उनको दे लो। लेकिन इनकी मैं स्थिति देख रहा था दोनों की कि ये काफी श्याम और एक ही संकल्प कि नहीं आप कुछ बताओ हम करेंगे और ये ठीक हो जाएंगे, शिव बाबा हमें मदद करेंगे। तो ऐसा पॉजिटिव होना कितना अच्छा है, नहीं तो ये स्थिति मनुष्य को तूफान में ले आती है और सारा ज्ञान, योग, खुशी, शांति, प्रेम सब नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो कहीं बहुत ज्यादा मोह ममता में, कहीं बहुत ज्यादा उलझनों में, कहीं छोटी-छोटी बातों में, परेशानियों में तो नहीं आ गया है। अपने चित्त को थोड़ा शांत करें, थोड़ा शिव बाबा पर विश्वास करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा संकल्प करें और अपने चित्त को थोड़ा शांत करें तो आप देखेंगे 50% जो वेस्ट थॉट हैं वो समाप्त हो जाएंगे।
मतलब ये भी एक स्टडी है कि कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं और कहाँ कहाँ से हमें अपने आप को सरल करने की जरूरत है और साथ ही एकाग्र करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है पता जी, लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन सीख लिया तब तो मन एकाग्र हो जाना चाहिए, लेकिन शायद मेडिटेशन सीखने के बाद भी ये चेकिंग करना और साथ ही अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है।
इसलिए ज्ञान, जिसको हम हमेशा ज्ञान का बल कहते हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं हम तो चैनल पे देख लेते हैं पीस ऑफ माइंड पे, और ये तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, हमें सेवा केंद्र पर जाने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन चैनल की तो एक सीमा है ना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते होंगे, कई ऐसी समस्याएं होती होंगी जिनका समाधान आपको यहाँ से नहीं मिलता होगा, तो आपको सेवा केंद्र पर रोज जाकर डेली क्लास करनी चाहिए, ज्ञान की चर्चाएं करनी चाहिए। तो ये विशेष रूप से ज्ञान का बल हमें मदद करता है कि क्यों मेरा मन भटक रहा है, चिंता लगी है मुझे तो उसका समाधान क्या करूं मैं, मुझे कोई उदासीनता रहती है, निराशा रहती है जीवन में, डिप्रेशन रहता है, उन सब के पीछे कुछ थॉट्स अवश्य हैं। उन थॉट्स को यदि मनुष्य पकड़ ले, यानी उसकी अवेयरनेस में आ जाए और फिर ज्ञान के द्वारा उसको चेंज करे। शिव बाबा ने परम शिक्षक बनकर हमें इस विश्व ड्रामा का ज्ञान बहुत गुह्य दिया है। ये संसार एक ड्रामा की तरह चल रहा है, इस गुह्य ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति समझ ले और उसको जीवन में अप्लाई करे तो बहुत सारी चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, डिप्रेशन, ये सब समाप्त हो जाता है।
मतलब भ्राता जी, कहा जाए कि योग के साथ साथ हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होगी जो हमें मदद करेगा अपने मन के वेस्ट थॉट्स को समाप्त करने में, अपने आप को थोड़ा चेंज करने में, लाइट करने में, ताकि हमारी एकाग्रता और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके।
बिल्कुल।
तो भ्राता जी, दूसरा प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से, चलिए इन्होंने तो शुरुआत की थी, ये रामेश्वर प्रसाद जी हैं टाटा नगर से, कहते हैं कि मैं पिछले 5 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा कभी कभी योग बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, और कभी कभी बिल्कुल भी योग नहीं लगता है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ।
हमारे चारों बैड एनर्जी बहुत ज्यादा है
जी,
उसका इफेक्ट कभी कभी मनुष्य पर आता है। लेकिन एक इससे भी जो सूक्ष्म बात है जिसका इफेक्ट मनुष्य की मनोस्थिति पे बहुत आता है, उसको जानना भी परम आवश्यक है कि हमारे जन्म जन्म के कर्म भी हमारा पीछा कर रहे हैं। कभी वो नींद में हमें इफेक्ट कर देते हैं, कभी किसी के द्वारा गलत व्यवहार से वो हमें इफेक्ट कर देते हैं, कभी वो हमारे अपने चिंतन को ऐसा निगेटिव कर देते हैं कि हमारी स्थिति लंबे काल के लिए डाउन हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम ये देखते हैं कि ये बात बहुतों के साथ हो रही है। मैं और स्पष्ट करूं, बहुतों को ऐसा अनुभव होता है कि हफ्ते में 3 दिन तो योग अभ्यास बहुत अच्छा होता है, 4 दिन होता ही नहीं। कईयों को अनुभव होता है कि सवेरे हमारा योग लगता ही नहीं, 5 बजे से लगना शुरू होता है, दिन में फिर बिल्कुल नहीं लगता, थोड़ा अच्छा शाम को लगता है। किसी किसी को अनुभव होता है जब मैं अपने घर में होती हूँ योग बहुत अच्छा लगता है, सेवा केंद्र पर जाती हूँ नहीं लगता। तो किसी को ये होता है जब मैं सेवा केंद्र पर होती हूँ तो योग बहुत अच्छा लगता है, घर में होती हूँ तो नहीं लगता। तो उस स्थान के वाइब्रेशंस हमारे मन पर किन चीजों का इफेक्ट है उसका प्रभाव, कभी नींद अच्छी नहीं हुई, स्वप्न कुछ ऐसे वैसे आ गए, उनका प्रभाव, कभी अन्न का प्रभाव। मान लो अन्न हमने ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खा लिया जिसकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, उसका मन पर प्रभाव होता है। कभी मनुष्य ने दूसरों को देखना प्रारंभ कर दिया, पर चिंतन उसके मन में चलने लगा, कुछ सांसारिक इच्छाएं बहुत बढ़ गई, उन्हें देखा पड़ोसी का बिजनेस तो बहुत आगे निकल गया है और मेरा तो ढीला रह गया, तो उसमें वो लग गया। ये कोई खराब काम तो नहीं है, लगना ही चाहिए, परंतु इन सब से उसने अपने मन को इतना उलझा लिया कि उसकी खुशी नष्ट हो गई, उसका ईश्वरीय नशा समाप्त हो गया, उसका स्वमान उसको भूल गया और मन भटकने लगा, योग समाप्त हो गया। ये इसके कारण होते हैं।
योग के मार्ग पे चल पड़ा हूँ तो निरंतर मेरी उन्नति होती चली जाए, कल जैसी मेरी स्थिति थी या योग में जो एकाग्रता थी उससे आज कहीं बेहतर हो, कल कहीं और बेहतर हो, मतलब लगातार मैं प्रोग्रेस करूं, तो कैसे लगातार प्रोग्रेस किया जा सकता है, क्या मूल बातों पर ध्यान दिया जाए?
जैसा इनका केस है तो इनको चाहिए कि 3 दिन का अपना सुंदर प्रोग्राम बनाएं, हो सके तो सवेरे 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, ये बिल्कुल मौन रह के बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, बहुत अच्छी मुरलियों की स्टडी करें और अपने से बातें करें, थोड़ा एकांत ले लें, मतलब चार ओर से अपने को समेट कर अंतर्मुखी होकर ये 3 दिन तक बहुत अच्छा ध्यान दें। और अगर कोई ऐसा कर सके कि 3 दिन के लिए मेरा मौन है, भोजन बहुत हल्का करेंगे और अच्छे अच्छे योग अभ्यास करेंगे, स्टडी करेंगे, 3 दिन की एक साधना का एक प्रोग्राम बना देंगे अपना, और सब चीजों से बुद्धि, जैसे मनुष्य छुट्टी भी तो ले लेता है ना, उसको कहीं प्रोग्राम में जाना
तो भी
तो
चला भी जाता है,
तो वो 3 दिन का ऐसा अपना प्रोग्राम बना ले और सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करे, सारा दिन भी अच्छे अच्छे योग अभ्यास करे, उसमें स्वमान आ जाता है, उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास आता है, ऐसा रिदीपन का अभ्यास आता है, उसमें तीनों लोकों की सैर करना आ जाता है, उसमें परम धाम में बहुत पावरफुल योग करना भी सम्मिलित है, तो उसमें चारों ओर संसार को और प्रकृति को वाइब्रेशंस देने का भी एक अभ्यास है। इन अभ्यास को जब वो 3 दिन का प्रोग्राम बनाए तो ऐसा रख ले कि वो आधा आधा घंटा 4-5 बार बैठेंगे
जी।
तो 5 बार आधा आधा घंटा बैठ के ये सारे के सारे अभ्यास कर ले, देखेंगे 3 दिन में ही किसी की स्थिति कितनी भी डाउन क्यों न हो गई हो, फिर से उड़ने लगेगा वो व्यक्ति और फिर जीवन एक ऐसी सुंदर लेवल पर चलने लगेगा कि लंबे काल तक गिरावट आएगी ही नहीं।
लेकिन ब्रदर जी, फिर आगे किस प्रकार का फिर अभ्यास करें? 3 दिन तो हमने कर लिया, लेकिन आगे चल के यदि हमने शायद कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगी, अप एंड डाउन।
ये जल्दी आ सकता है फिर, यदि हम 3 दिन किया और हमने सोचा जैसे लोग भक्ति करते हैं, हमने तो बहुत कर लिया और अब तो छुट्टी हो गई, फिर डेली अमृत वेला उठना और ईश्वरीय महावाक्य सुनना
जी।
सवेरे बहुत अच्छा योग हो जाए, सवेरे 4 से 8 तक अपने को अच्छी तरह चार्ज कर लें और कम से कम आधा पौना घंटा रोज श्याम का योग भी अवश्य करना चाहिए, और बीच में स्वमान के अभ्यास सिंपली रखें, इतना थोड़ा सा करने से, हालांकि ये बहुत नॉर्मल रूटीन है, पर ऐसा करने से बहुत अच्छा अनुभव होगा। और मैं तो बल्कि राय दूंगा कि हर 3 मास के बाद व्यक्ति ऐसे 3 दिन स्पेयर करे और फिर वैसी अपनी एक 3 दिन की योग साधना, जिसको हम भट्टी कहेंगे, योग भट्टी, योग साधना का प्रोग्राम बनाए, हर 3 मास में 3 दिन ऐसा साधना का प्रोग्राम बना ले मौन रखकर, और अमृत वेला, सारा दिन स्वमान का अभ्यास और शाम को योग अभ्यास, ये रेगुलर रखे, मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। ईश्वरीय महावाक्य बहुत सुंदर चीजें हैं, देखिए मुश्किल से तो भगवान पढ़ाने आया, उसने सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे रहस्य खोल दिए, मैं कौन हूँ ये बता दिया, तो उसको हम अगर रोज सुनते हैं तो ज्ञान हमारा सूक्ष्म होता जाएगा, मन आनंद से भरता जाएगा, अनेक अच्छे रहस्य हमारी समझ में आते जाएंगे, और जिसने सवेरे बहुत अच्छा योग किया हो वो जब ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो अनेक गुह्य रहस्य उनको समझ में आएंगे। इन चीजों को लेकर चलने से स्थिति में कभी भी गिरावट नहीं आएगी।
बिल्कुल, चलिए व्रता जी, रामेश्वर जी को लगता है कि बहुत विस्तार से इसका उत्तर मिला है, और कभी निराश भी वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पथ में कुछ न कुछ कंटक और बाधाएं तो कभी न कभी आ ही जाती हैं, निराश न हो कि लगातार अभ्यास करना शायद इनके लिए रामबाण दवा की तरह होगा। अगला प्रश्न व्रता जी, देवयानी मोहंती जी ने कोलकाता से भेजा है और ये कहती है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हें 8 घंटा योग करना है, मैं लाख कोशिश करती हूँ कि 8 घंटा योग करूँ लेकिन ये संभव नहीं होता है, कृपया ये बताएं कि कैसे ये संभव होगा और इस 8 घंटे योग में क्या क्या शामिल किया जा सकता है और साथ ही इसके फायदे भी क्या हैं, ये भी इन्होंने जानना चाहा है।
फायदे तो अनेक हैं और उसको जानने से तो इनमें उमंग आ जाएगा
जी।
इस सारे संसार में 108 आत्माएं बहुत महान है जो भगवान ने चुनी है, जो माया पर संपूर्ण जीत प्राप्त करती है। माया का यहाँ अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैर भाव, इन सब से। तो ये 108 आत्माएं इन पर विजय पाती हैं और उनकी पहली साधना है 8 घंटे योग। जो 8 घंटे योग करेगा मनुष्य, और लंबा समय करेगा, उसकी इस माया पर विजय होती चलेगी और वो बन जाएगा विजयी रत्न, जिसकी यादगार में 108 की माला हमारे भारत में हिंदू धर्म में जहां तहां सिमरी जाती है और लोगों को ये पता नहीं ये 108 क्यों है, ऊपर फूल है, नीचे मेरुदाना है, डबल है, फिर सिंगल है, ये सब क्या है लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये उन आत्माओं की यादगार में माला बनी है जिन्होंने माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त की है। 8 घंटे योग का सबसे ज्यादा महत्व ये है। दूसरा महत्व ये है, जो 8 घंटा रोज योग लगाते हैं उनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस निरंतर चारों ओर फैलते रहते हैं, सुख शांति, पवित्रता, शक्ति, इन सब के। तो ये बहुत बड़ी सेवा का साधन है, क्योंकि भगवान युग बदलने आया है, कलयुग को बदलना है, सतयुग की पुनः स्थापना करनी है। तो 8 घंटे योग माना इस बदलाव के कार्य में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग। दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है। तीसरा, 8 घंटे योग करने वालों को बहुत लंबा समय ईश्वरीय मिलन का अनुभव होगा रोज। उन्हें इंतजार नहीं करनी पड़ेगी कब बाबा मिलेंगे, कब हमें परमात्मा अनुभूति होगी, रोज होगी, कई बार होगी। चौथी बात, बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती जाएगी, रिफाइन, मन बहुत अच्छे स्थिति में रहेगा, सुंदर विचारों को मन एंजॉय करेगा, बुद्धि क्लीन होती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। पांचवी बात, प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी, और प्योर बनना कलयुग में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जब बचपन में था तो जब हम किसी महात्मा से बात करते थे तो वो कहता था पवित्र बनना मन तक इम्पॉसिबल, कलयुग में हो ही नहीं सकता, मन में तो तूफान चलते ही रहेंगे। लेकिन जो 8 घंटा योग अभ्यास करते हैं उनका मन बिल्कुल शांत, कर्मेंद्रियों पर विजय, मायावी संकल्पों पर विजय होकर वो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं। तो पहले तो ये बहुत बड़ा महत्व याद रखना पड़ेगा।
तो एक प्रकार से मानव महामानव बन जाएगा,
मानव महामानव महायोगी, संसार में वो सितारे चमकते रहेंगे। अब इसमें हम 4-5 चीजों को इंक्लूड करेंगे। पहला अभ्यास स्वमान, जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास जिसमें हमारा एसडीडीपन भी आ गया। इसके बाद योग के भिन्न भिन्न अभ्यास, चाहे हम भगवान से रूढ़िहन करें या सूक्ष्म लोक में जाकर उससे मिलन करें और फिर परम धाम में उसके वाइब्रेशंस के नीचे बैठना, जिसको हम पावरफुल योग कहते हैं, ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, बीज रूप योग कहते हैं, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। और फिर है सकाश देना, वाइब्रेशंस देना। ये सब बातें 8 घंटे योग में आ जाएंगी। मान लो हम चलते फिरते हैं और हम ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ, तो ये योग हो गया। मान लो कोई माता भोजन बना रही है और वे ये बार बार अभ्यास कर रही है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो ये योग अभ्यास हो गया। हम चलते फिरते सबको आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, ये हमारा योग अभ्यास हो गया। हम बहुत अच्छी स्मृति में हैं, मैं पूर्वज हूँ, ये हमारा योग अभ्यास हो गया। हम ऐसे अभ्यास में हैं कि परमात्मा किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, चलते फिरते कर्म करते, ये बहुत पावरफुल योग अभ्यास हो गया। हम शाम को या सवेरे अपने सुप्रीम फादर से, अपने सुप्रीम साजन से बातें कर रहे हैं, मन की प्यार भरी रूढ़िहान हो रही है, ये सब योग के अंतर्गत आ जाता है। इस सब का एक प्लान बना लेना चाहिए कि इस क्रम में ये अभ्यास करेंगे, इस क्रम में ये। कोई ये न सोचे कि वो 8 घंटा बैठकर योग करेंगे, बैठने की बात नहीं, बैठा जाए ज्यादा 2 घंटे, बाकी सारा समय कर्म करते हुए ही सुंदर योग अभ्यास करें, इसको एक नेचुरल रूप दे दें। इसको कहते हैं योग युक्त जीवन हो जाना। तो 8 घंटे योग करना, हंसते बहलते काम करते बहुत इजी हो जाएगा।
बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो बड़ा सहज लग रहा है, लेकिन ये तो लाख कोशिश कर चुकी हैं देवयानी जी, लेकिन हो नहीं पाया है। क्या कारण लगता है व्रता जी आपको, जैसी प्लानिंग आपने दी है वैसी प्लानिंग करना लोगों को नहीं आता, या फिर उसे जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है प्रैक्टिकल में, वहाँ दिक्कत हो जाती है?
कईयों के पास कई समस्याएं हैं, कईयों का योग लगता नहीं, कईयों को सिर दर्द होने लगता है, कईयों को भारी लगता है, बोर हो जाते हैं, अरे सारा दिन यही करेंगे क्या, टीवी भी तो देखनी है हमें, थोड़ा बच्चे उसके साथ हंसे बहले, करे ये सब काम, लेकिन इनमें भी योग किया जा सकता है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग और रेगुलर अभ्यास और दृढ़ता, 6 मास तक बहुत दृढ़ता ले आए कि मुझे करना है, कुछ चीजें अवश्य छोड़ देनी पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें सफलता ना हो।
क्या क्या छोड़ना पड़ेगा इस पे चर्चा जरूर करेंगे भ्राता जी, क्योंकि एक बड़ी साधना है 8 घंटे योग करना और लगातार। कई बार हम सुनते रहे हैं और कई बार चर्चा भी हुई है और कई बार ये प्रश्न भी आए हैं कि हो नहीं पाता है, कैसे सहज हो, कल जरूर आपसे जानेंगे। आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। आज योग की बहुत सुंदर और गहन चर्चा के लिए जो प्रकाश आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, योग वास्तव में राजयोग भारत का प्राचीनतम योग है और यदि आप शास्त्र उठाकर देख लें तो पता चलेगा कि सचमुच राजयोग एक संजीवनी है जिसमें हर समस्या का समाधान है, चाहे वो मानसिक समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, चाहे पारिवारिक, सामाजिक या वैश्विक समस्या है, सभी का समाधान राजयोग में समाहित है। मूल बात राजयोग यही सिखाता है, जो मैं अब तक समझ पाया हूँ भ्राता जी के साथ चर्चा करते हुए, कि इससे मन बहुत सशक्त हो जाता है, मन में एक सकारात्मक भाव आ जाता है और हम उस परम सत्ता के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। और यदि ये सब चीजें हो जाएं, मैं अंदर से सशक्त हो जाऊं, मजबूत हो जाऊं, मेरा दृष्टिकोण बहुत व्यापक हो जाए, विशाल हो जाए, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाए और उस सर्वशक्तिवान का साथ मुझे प्राप्त हो जाए, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि समस्याएं कहीं भी टिकेंगी नहीं। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रभु से ये मत कहो कि समस्या बड़ी विकट है, लेकिन समस्याओं से ये कहो कि प्रभु मेरे निकट है। तो बात कितनी अच्छी हो जाएगी। तो हम भी राजयोग में यही अनुभव करते हैं कि प्रभु मेरे निकट है, तो समस्याएं चाहे कितनी भी विकट हों समाप्त हो जाती हैं। इस निकटता को और भी बढ़ाएंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।